नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेगासस जासूसी कांड को लेकर बार बार यह समझने की जरूरत है कि इस सॉफ्टवेयर से, स्पाईवेयर से क्या किया जाता है और क्यों सभी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसके जरिए आपके फोन में या लैपटॉप में ऐसे दस्तावेज चोरी से रख दिए जा सकते हैं जिनके आधार पर सरकार आपको आतंक से लेकर तमाम तरह के गंभीर मामलों में फंसा सकती है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए हैं कि आपके इनबॉक्स में हजारों ईमेल के बीच 2-3 ईमेल इस तरह से डाल दी जाए और आपके ईमेल से किसी को जवाब भेज दिया जाए, तो आप पेगासस को लेकर सतर्क हो सकते हैं। नहीं समझ आए तो इन खबरों को दोबारा से सर्च कर जरूर पढ़िए। अमेरिका के ही आर्सेनल लैब ने फोरेंसिक जांच के बाद बताया कि भीमा कोरेगांव केस के आरोपी रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, आनंद तेल टुंडे, स्टैन स्वामी के कंप्यूटर को हैक किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज डाले गए और फिर इन सभी को भारत के खिलाफ साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। स्टैन स्वामी की तो जेल में ही मौत हो गई। आर्सेनल ने बताया कि भीमा कोरेगांव की हिंसा के बाद रोना विल्सन के कंप्यूटर में 22 संदिग्ध दस्तावेज फाइलें डाल दी गईं। दुनिया भर में छपी पेगासस जासूसी कांड की खबरों में इन लोगों का भी नाम है और कहा गया है कि इनमें से कई लोगों के फोन की जासूसी की गई। क्या यह बात डराने वाली नहीं है कि आपके इनबॉक्स में कोई सॉफ्टवेयर के जरिए ईमेल भेज रहा है, पीडीएफ फाइल भेज रहा है, जवाब दे रहा है, ऐसी बातें लिख रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से खतरनाक हो, आपको पता भी ना हो और आप एक दिन जेल के भीतर डाल दिए जाएं? ऐसे सॉफ्टवेयर से ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि पेगासस जासूसी स्पाईवेयर के जरिए आपके फोन से सब कुछ देखा जा सकता है। आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया है तब भी इसका कैमरा ऑन किया जा सकता है और आपको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। यह काम पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और अन्य लोगों के फोन में सॉफ्टवेयर पहुंचाकर किया गया है। अगर यह साबित होता है कि अपने नागरिकों की जासूसी सरकार ने कराई, तो यह शर्मनाक भी है। सिर्फ जानकारी ही नहीं, सरकार ने किसी को नहाते, सोते, खाते भी देखा होगा। अगर महंगाई के जिन सपोर्टरों को लगता है कि यह ठीक है, इसका बचाव किया जाना चाहिए, तो उन्हें बिना दरवाजे और पर्दे वाले घरों में रहना चाहिए। मुझे भरोसा है कि महंगाई के सपोर्टर उछल पड़ेंगे और कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रहित में कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो कहानी पुरानी हो गई जिसमें केवल राजा ही नंगा हुआ करता था। महंगाई के सपोर्टर तो वैसे भी कपड़े पहनते हैं। हमारा मकसद ये बताना है कि पेगासस जासूसी कांड पुराने जमाने में होने वाली फोन टैपिंग की तरह नहीं है, वो भी गलत था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के जरिए न सिर्फ किसी को नहाते, खाते, सोते देखा जा सकता है, बल्कि उसके कंप्यूटर या फोन में खतरनाक दस्तावेज डालकर उसे आतंकी साबित किया जा सकता है। अगर इतना बेसिक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ता हूं। और इसके जरिए किसी भी फोन पर हमला किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, केवल आईफोन ही नहीं, किसी भी प्रकार के एंड्रॉयड फोन पर भी हमला किया जा सकता है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजराइल की कंपनी एनएसओ पर मुकदमा दायर किया है। एप्पल ने एनएसओ के इस सॉफ्टवेयर को खरीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है। एनएसओ पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है। 2019 में व्हाट्सएप ने भी इस कंपनी पर मुकदमा किया था जब इसके कई उपभोक्ताओं के फोन की जासूसी की खबर मिली थी। तब व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से भारत के भी कुछ उपभोक्ताओं को बताया था, यूजर को बताया था कि आपका फोन हैक हुआ है। इसे लेकर भारत में खूब हंगामा भी हुआ था। उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में लंबी खबरें छपी थी। और इस साल जुलाई में जब द वायर ने पेगासस जासूसी कांड की खबर छापी, तब भी व्हाट्सएप के प्रकरण को याद किया गया था। तब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने व्हाट्सएप को सपोर्ट किया था, मगर एप्पल कंपनी चुप रह गई थी। पेगासस कांड के बाद भी एप्पल इस विवाद से दूरी बना रही थी, लेकिन उसके ग्राहकों का भरोसा हिल गया कि यह फोन भी सुरक्षित नहीं है। शायद यह वजह रही हो कि एप्पल ने अपना रुख अब जाकर बदला है और इजराइल की इस कंपनी पर मुकदमा किया है। एनएसओ के प्रवक्ता ने कहा है कि एनएसओ की टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर में हजारों लोगों की जानें भी बचाई गई हैं, पीडोफाइल और आतंकियों को पकड़ा गया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने कहा है कि वह संदेश देना चाहती है कि एक मुक्त समाज में, फ्री सोसाइटी में, राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा प्रायोजित ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पेगासस एक प्रकार से हथियार है और इसका इस्तेमाल देश के द्वारा ही किया जाता है। गार्डियन अखबार ने लिखा है कि आईफोन के आई मैसेज के जरिए इस सॉफ्टवेयर को फोन में घुसा दिया जाता है। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वालों के फोन की जासूसी की गई इसके जरिए। टोरंटो स्थित सिटीजन लैब ने भी कहा है कि एनएसओ जैसी कंपनियां दुनिया भर में मानवाधिकार के उल्लंघन को बढ़ावा देती हैं और बदले में धन कमाती हैं। ये दावा तो करती हैं कि केवल सरकारों को बेचती हैं और इसका इस्तेमाल कानूनी रूप से होता है, लेकिन असलियत में तानाशाहों को अपनी सेवा मुहैया कराती हैं। आईफोन एक सुरक्षित फोन माना जाता है। पेगासस जासूसी कांड के बाद यह भ्रम टूट गया। इसके बाद आईफोन ने जासूसी रोकने का एक सॉफ्टवेयर भी जारी किया, लेकिन लगता है ग्राहकों में अब पहले जैसा विश्वास नहीं रहा। शायद इसीलिए कंपनी उस भरोसे को हासिल करने के लिए केवल मुकदमा ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए होने वाले सर्विलांस को पकड़ने के लिए जो लैब हैं और इसके खिलाफ अभियान चलाने वाले जो संगठन हैं, उन्हें यह कंपनी $10 मिलियन की आर्थिक सहायता भी देने जा रही है। हाल ही में अमेरिका ने इसराइल की एनओसी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण इस कंपनी की रेटिंग भी काफी गिर गई। अब खबरें छप रही हैं कि प्रतिबंध लगाने से कंपनी दिवालिया हो सकती है, उसका कर्जा बढ़ सकता है। भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ऐसा कुछ कहा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह के टूल्स विदेशी सरकारों को अलग अलग देशों में दमन के लिए सक्षम बनाते हैं। तानाशाही सरकारें ऐसे टूल्स का इस्तेमाल खूब करती हैं, इसके जरिए अपने देश की सीमा के बाहर जाकर भी असहमति रखने वालों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को चुप कराना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि पेगासस के खतरे को लेकर दुनिया की सरकारें अपनी तरफ से सतर्क हो रही हैं। केवल भारत सरकार का रुख साफ साफ नजर नहीं आता। क्यों? इसराइल में भी इस मामले की जांच हो रही है जिसके नतीजे का इंतजार है। इस जुलाई में जब द वायर ने पेगासस कांड को लेकर खबर छापी तो कहा गया मॉनसून सत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। ऐसी कहानी कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी बनाई जा रही है इसी पैटर्न पर कि पंजाब में अशांति बढ़ रही थी, उसे रोकने के लिए कानून वापस लिया गया है। कहानी बना देने से कहानी नहीं बन जाती। आखिर भारत सरकार ने इस कांड के पर्दाफाश के बाद सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि इसका सॉफ्टवेयर किसके कहने पर भारत में खरीदा गया और क्या सरकार ने खरीदा? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर खरीदा भी गया तो पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं के फोन की जासूसी किसने कराई और क्या पता लगाने के लिए कराई? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रविंद्रन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। कोर्ट ने माना है कि अपने नागरिकों की जासूसी करना बेहद गंभीर बात है, लेकिन सरकार को ऐसा कुछ नहीं लगा। न सरकार ने इसे लेकर सतर्कता दिखाई। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने फैसला सुनाते हुए लिखा कि भारत सरकार ने पेगासस को लेकर जो आरोप लगे हैं उनसे विशिष्ट रूप से, स्पेसिफिक रूप से इनकार नहीं किया। मतलब साफ साफ नहीं कहा कि आरोप सही हैं या गलत हैं। आखिर भारत सरकार ने इस पर साफ साफ क्यों नहीं कहा? संसद के दोनों सदनों में सरकार के जवाबों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सरकार को दिक्कत किससे है। क्या इसलिए कि द वायर ने इसका पर्दाफाश किया, या दिक्कत है कि इस बार उन लोगों के नाम भी सामने आ गए जिनकी जासूसी हो रही थी? क्योंकि पेगासस से जासूसी हुई है इसकी जानकारी सरकार को तो थी। अब हम आपको नवंबर 2019 से लेकर अगस्त 2021 के बीच राज्यसभा और लोकसभा में सरकार के 5 जवाबों के बारे में बताना चाहते हैं। इन जवाबों में आप एक ही मंत्रालय के अलग अलग जवाब और दूसरे मंत्रालय के अलग जवाब देख सकते हैं। पहला जवाब है 21 नवंबर 2019 का, जिसे इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने राज्यसभा में लिखित रूप में दिया था। सवाल पूछा गया था रवि प्रकाश वर्मा सांसद की तरफ से कि हाल में खबर आई थी कि व्हाट्सएप के जरिए भारतीयों की निजता का हनन हुआ है, क्या यह सही है? तो डिटेल दें। क्या व्हाट्सएप ग्रुप ने मई और सितंबर 2019 में इसे लेकर सरकार को अलर्ट किया था? अगर किया था तो जानकारी दीजिए। तब राज्य मंत्री अपने जवाब में कहते हैं कि सरकार को व्हाट्सएप द्वारा स्पाईवेयर नामक पेगासस के जरिए कुछ व्हाट्सएप मोबाइल प्रयोक्ताओं के उपकरणों को प्रभावित करने वाली सुभेदताओं के बारे में सूचित किया गया है। व्हाट्सएप के अनुसार इस स्पाईवेयर का विकास इसराइल स्थित कंपनी NSO द्वारा किया गया है तथा इसने पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल के जरिए विश्व भर के लगभग 1400 प्रयोक्ताओं यूजर्स के मोबाइल फोन तक पहुंचने का प्रयास किया है, जिसमें 121 प्रयोक्ता यूजर्स भारत के शामिल हैं। नवंबर 2019 के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री कहते हैं कि व्हाट्सएप ने पहले मई 2019 को जानकारी दी है। मई में इस आधार पर सरकार की एक संस्था है, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT IN बोलते हैं, इसने एक नोट बनाया था। सवाल है कि इसके बाद भी सरकार ने क्या किया? क्या सरकार को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी? उसके नागरिकों की कोई जासूसी करा रहा है, या तो उसके भीतर से या कोई बाहर के देश से, तब तो और भी गंभीर बात है। सरकार किस आधार पर निश्चिंत हो गई? यही नहीं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया गया कि इस बारे में जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराए। सरकार को व्हाट्सएप से किस तरह की जानकारी मिली हमें नहीं पता। अब जवाब नंबर दो पर आते हैं। यह जवाब 5 दिसंबर 2019 को रविशंकर प्रसाद का दिया हुआ है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी सवाल करते हैं कि NSO पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, जानकारी दीजिए। क्या मंत्रालय उन कंपनियों के बारे में जानकारी रखता है जो स्पाईवेयर बेचती हैं या ऐसी सेवाएं देती हैं? उनके तीन सवाल हैं। दूसरे सवाल का जवाब रविशंकर प्रसाद सीधे ना में देते हैं, यानी सरकार को पता नहीं है कि NSO जैसी जासूसी के सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं और ऐसी सेवाएं देती हैं। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी के पहले सवाल के जवाब में सरकार वही बात कहती है जो नवंबर के महीने में राज्य मंत्री संजय धोत्रे मोटा मोटी बता चुके हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ने खुद से पेगासस के बारे में सूचना दी है। लेकिन इस जवाब में रविशंकर प्रसाद एक और दिलचस्प जानकारी देते हैं। लिखते हैं कि सर्ट इन ने 26 नवंबर 2019 को NSO ग्रुप को नोटिस भेजकर भारतीय यूजर्स पर इस तरह के सॉफ्टवेयर और उसके असर की जानकारी मांगी है। क्या रविशंकर प्रसाद या उनके मंत्रालय को पता नहीं था कि NSO अपना सॉफ्टवेयर केवल देश की सरकारों को बेचता है? NSO यह जानकारी सार्वजनिक नहीं करता कि उसने सॉफ्टवेयर किसे बेचा। फिर इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय NSO को नोटिस भेजकर क्यों पूछ रहा था? NSO का जवाब क्या आया, इसके लिए कितना कोई रिसर्च करे, थक जाता हूं। यहां तक आपने दो जवाब देख लिए। इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय जिस जवाब में कहता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर है और कंपनी से पूछा जा रहा है, विडंबना है कि उसी जवाब में यह भी कहता है मंत्रालय कि स्पाईवेयर की दुनिया में कौन कौन सी कंपनियां है पता नहीं है। सरकार ने ऐसी कंपनियों के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि यह सरकार का ही आंकड़ा है कि 2015 से 19 के बीच साइबर हमले 600% बढ़ गए हैं। अब आते हैं जवाब नंबर तीन पर। यह जवाब राज्यसभा में 12 मार्च 2020 को दिया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सवाल करते हैं कि क्या यह सही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर को भारत सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा है? तो राज्य मंत्री संजय धोत्रे लिखित जवाब में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस मंत्रालय के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर खरीदा गया है या नहीं। इस मंत्रालय के मंत्री को यह भी पता नहीं कि स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनियां कौन कौन है, और इस मंत्रालय का नाम इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। मंत्रालय ने कहा जानकारी नहीं है, यह नहीं बोला कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया है। अभी तक हमने राज्यसभा और लोकसभा में सरकार के तीन जवाबों के बारे में बताया। अब जवाब नंबर चार पर आते हैं। लोकसभा में मेनका संजय गांधी और अन्य सांसद इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री से सवाल करते हैं कि क्या सरकार को देश में पेगासस नाम के स्पाईवेयर की मौजूदगी के बारे में जानकारी है, क्या सरकार ने कोई जांच शुरू की है? तो 24 मार्च 2021 को मंत्रालय का जवाब आता है कि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नवंबर 2019 में सरकार के पास जानकारी है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है, और यह जानकारी व्हाट्सएप ने सरकार को दी है। मार्च 2021 में बीजेपी के ही सांसद को सरकार कहती है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप इस खेल को और खेल के इस कमाल को समझ पाए? इसके लिए बैक डेट में यानी पुराना अखबार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। संसद में दिए गए जवाबों पर बारीक नजर रखनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। मार्च 2021 के इस जवाब से यह भी साफ है कि व्हाट्सएप की तरफ से सूचना देने के बाद भी सरकार ने कोई जांच नहीं की। अगर सरकार ने नवंबर 2019 में एनएसओ से पूछा था तब उसकी जानकारी भी सदन में रख देनी चाहिए थी या सदन के बाहर रखनी चाहिए थी कि एनएसओ ने यह कहा है वो कहा है। अब आते हैं जवाब नंबर 5 पर। 9 अगस्त 2021 का यह जवाब अलग है। वी शिवदासन के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेन देन नहीं की है। यानी रक्षा मंत्रालय को पता है कि कोई लेन देन नहीं हुई। लेन देन हुई है या नहीं इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय को कुछ नहीं पता। क्या आप अब भी इन जवाबों में आ रहे इतने अंतरों को देखकर कुछ संदेह करना चाहेंगे? 5-5 जवाब में, संसद में दिए गए जवाब में अलग अलग बातें हैं। ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं है। इस साल जुलाई में खबर आने के बाद फ्रांस में जांच हो गई, लेकिन भारत में मई 2019 में और जुलाई 2021 में दो दो बार पेगासस से जुड़ी खबर आने के बाद कोई जांच नहीं होती है। और इस पर हम बात करेंगे एमके वेणु से, द वायर के। वेणु, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अभी ट्वीट किया कि पहले व्हाट्सएप ने भी मुकदमा किया, एप्पल ने भी किया, उन दोनों के पास पुख्ता जानकारी है, और क्या आपको लगता है कि इन दो कंपनियों को जो जानकारी है ये दोनों कंपनियां बाध्य होंगी सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए?
मेरा मानना है रवीश कि ये दोनों कंपनियां, व्हाट्सएप, आपको याद होगा 2019 में पेगासस का ब्रीच हुआ था और व्हाट्सएप ने उस पर तहकीकात करी थी और तब उन्होंने कैलिफोर्निया में जाके कोर्ट में केस करा, और उस वक्त आपको याद होगा सरकार ने एडमिट किया, पार्लियामेंट में भी कहा हाँ ये हुआ है, मगर सरकार ने जिम्मेदारी व्हाट्सएप पे छोड़ दी कि आप पता करें और आप इसको किसी तरह इसका इसको सुलझाएं। तो व्हाट्सएप ने सरकार को उस वक्त लिखा कि भाई हमने तो अपने सिक्योरिटी सिस्टम ठीक कर लिया है, मगर आप सवाल उठता है रवीश, हिंदुस्तानी सरकार ने क्या करा? भाई आप हिंदुस्तानी सिटीजन्स का के फोन पे सर्वेलेंस हुआ, ब्रीच हुआ, तो यहां पे कोई केस नहीं करा, ना हिंदुस्तानी सरकार ने एनएसओ को चिट्ठी लिखी। तब वही चीज रवीश मैं कह रहा हूं कि अब फिर रिपीट हो रहा है, इस बार फिर एप्पल आईफोन में के ब्रीच हुआ है, और चाहे वो जजेस हो, चाहे वो पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, इलेक्शन कमीशनर हो, आईफोन उनके ब्रीच हुए, और इस बार आईफोन ने भी ये दावा किया कि वो पुख्ता जानकारी लेके उसी कैलिफोर्निया कोर्ट में जाके देंगे। तो जब अगर वहां देंगे रवीश, तो जाहिर है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो मेरा मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी और मदान लोकुर कमीशन, दोनों को वो इंफॉर्मेशन यहां भी मिलेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी व्हाट्सएप के और एप्पल कंपनी के, आईफोन के जो लोग हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया है, रवीश ये आप सोचिए, एप्पल बहुत दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन और आईपैड सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी है, और उनका मेन सबसे बड़ा उनका सेलिंग प्रोपोजिशन से कहते हैं, बेचने का सबसे बड़ा उनका एक यूनिक प्रोपोजिशन ये है कि उनकी प्राइवेसी सबसे पुख्ता है, सबसे सबसे जबरदस्त है, उसको इन्होंने ब्रीच किया। तो एप्पल इनको छोड़ेगा नहीं, एनएसओ को, मेरे हिसाब से। और जिसके घर में रवीश चोरी हुई है उसने तो अपनी तहकीकात करी है, तो एप्पल के घर में चोरी हुई है ना, जो हम सब एप्पल यूज करते, तो एप्पल ने पूरी, मेरे हिसाब से पूरी पुख्ता जानकारी, अपने जो सिस्टम्स के टेक्नोलॉजी वाली जानकारी लेके वो यूएस कोर्ट में जाएगी। उसके बगैर वो ये दावा नहीं करते कि हम कोर्ट जाके हम एनएसओ को इस पे वो करेंगे। और वही जानकारी
मैंने, ये आपने जो कहा व्हाट्सएप वाला, हमने राज्यसभा और लोकसभा में सरकार के 5 बयानों को दिखाया, और उसमें एक जगह जिक्र मिलता है कि सरकार ने एनएसओ को लिखा है, लेकिन क्या जवाब आया है इसका जिक्र नहीं मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपने ठीक कहा कि व्हाट्सएप अपनी तरफ से जांच कर रहा है, क्या सरकार ने अपने नागरिकों की चिंता नहीं की कि उनके नागरिकों के बाथरूम में, वॉशरूम में, कहां कहां न जाने किस किस हाल में फोन के जरिए कैमरे से देखा जा रहा है, ये इस बात को लेकर क्या सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि उसमें पत्रकार है, विपक्ष के नेता है, और जहां तक मुझे याद है न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग भी हैं इसमें?
बिल्कुल रवीश, ये मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर को भाई इनका दायित्व क्या है कि भाई इनके जो लाखों करोड़ों कस्टमर हैं दुनिया में उनको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि भाई इनका तो बिजनेस है। वो कोर्ट जाके वो ये सारी चीजें कस्टमर के लिए वो कर रहे हैं और हमारी जो सरकार है जो नागरिक के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है जो इतने खुले आम ब्रीच हो रहा है और सारी दुनिया उसको देख रही है उस पर कोई इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई एनएसओ को चिट्ठी देके उनसे जवाब नहीं, जबकि अमेरिका की सरकार ने भी पीछे एनएसओ को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है एंटिटीज और उसी के चलते ये एप्पल ने भी उनके खिलाफ केस करा है। तो ये मोदी जी और इनके जो सरकार इनकी कैबिनेट है ये क्या कर रही है अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और पूरी तरह डिनाई भी नहीं कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है कि ना डिनाई कर रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं।
वी ओनली चेंज द रूल्स रेगुलेशंस टैक्सेशन रिजीम टू अट्रैक्ट द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड एंड आई थिंक द फार रीचिंग डिसीजन व्हिच वी हैव टेकन हैज आल्सो बीन हर्ड बाय एप्पल बट एज आई सेड ऑन द डे ऑफ माय मीटिंग एप्पल हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन इंडिया इन अ वेरी इफेक्टिव वे।
आपको लगता है वेणु कि चूंकि एप्पल बड़ी कंपनी है उसकी अपनी एक साख है वो कंपनी अपना यहाँ गराज खोलती है तो केंद्रीय मंत्री चले जाते हैं और उसे बड़े हेडलाइन के रूप में पेश करते हैं जैसा कि एप्पल ने यहाँ यूनिट खोलने वाला है खोलने वाली है एप्पल ये कर देगी और वो कर देगी उसे सरकार बड़ी कामयाबी के रूप में दिखाती है। अब वही एप्पल इसको चैलेंज कर रही है तो आपको लगता है कि इससे सरकार का जो वृतांत था नैरेटिव था वो कमजोर पड़ा इससे और दुनिया भर में और दबाव पड़ेंगे दूसरे देशों की सरकारों पर भी कि इसकी जांच करें अच्छे से?
बिल्कुल रवि जी, आपने जो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरकार एप्पल को अब पिछले आपने देखा दो साल में सर पे बिठा के घूम रही है आत्मनिर्भरता, एप्पल यहाँ पे ये खोल रहा है वो खोल रहा है बेंगलोर में खोल दिया और एप्पल की क्रेडिबिलिटी पे सरकार ने ही अपना ठप्पा लगाया। अब वही एप्पल कोर्ट में जाके बोल रही है कि अगर वो बोले कि भाई उनके फोन में बहुत ज्यादा ब्रीच हुआ है हिंदुस्तान में भी हुआ है तो ये सरकार के लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन है, इसमें और भी जवाबदेही बढ़ जाएगी क्योंकि एप्पल को तो सरकार नकार नहीं सकती कि भाई ग्लोबल कंपनी है क्रेडिबिलिटी है सरकार ने खुद इनकी बड़ी तारीफ करी है तो ये बहुत ही मतलब एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन है सरकार को एक कोने में फंसाने वाली बात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया वेणु हमसे बात करने के लिए। तो कुछ बातें निकल कर आई वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से व्हाट्सएप का प्रकरण सामने आने पर सरकार ने एनएसओ कंपनी जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है उसे पत्र लिखा था, क्या जवाब आया ये हमें उसकी जानकारी नहीं है। क्या सरकार ने जब नाम सामने आए जुलाई में जब वायर ने रिपोर्टिंग की तो क्या उसके बाद एनएसओ को कोई पत्र लिखा, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात कि सरकार एप्पल को बहुत ही विश्वसनीय कंपनी मानती है, उसकी विश्वसनीयता उसकी नजर में इतनी बड़ी है कि वो कंपनी यहां पर एक छोटी सी दुकान खोल ले तो केंद्रीय मंत्री पहुंच जाते हैं, उसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में भुनाया जाता है। आप खबरों को सर्च कर लीजिए। तो क्या वही भारत सरकार मोदी सरकार एप्पल की इस याचिका पर विश्वास करेगी, उस आधार पर जांच करेगी, पूछेगी एप्पल से कि आपने जो जांच की है वो जांच की जानकारी हमें भी दीजिए। पेगासस सॉफ्टवेयर हमारे आपके नागरिक होने के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा है, इसे लेकर वही सरकार निश्चिंत हो सकती है जो इस बात से निश्चिंत है कि लोग ऐसे मुद्दों की परवाह नहीं करेंगे, करेंगे तो गोदी मीडिया किसी और मुद्दे की तरफ मोड़ देगा या उसे उस हवा का इंतजार है जो इस मुद्दे को अपने आप कहीं और उड़ाकर ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु प्रदूषण के बारे में ऐसा ही कुछ कहा कि ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि हवा चल गई और वायु प्रदूषण कुछ कम हो गया, सरकार के करने से नहीं हुआ, वैसा ही एप्पल के करने से हुआ है, सरकार ने अभी तक इसकी जांच नहीं की है। आप ब्रेक ले लीजिए। बेशक जलवायु परिवर्तन राजनीतिक मुद्दा नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जलवायु परिवर्तन वास्तविकता नहीं है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर इलाके में उत्तर पूर्वी मॉनसून का ऐसा कहर टूटा है कि आमतौर पर सूखा माने जाने वाला यह इलाका अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि इतनी बारिश हुई है। उमा सुधीर वहां की बारिश को लेकर एक लंबी रिपोर्ट पेश कर रही हैं।
आसमान से जैसे आफत बरस रही है। तिरुपति के तिरुमला हिल्स में कुछ ही घंटों के अंदर 12 से 14 सेंटीमीटर बारिश। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। ये क्लाइमेट चेंज नहीं तो क्या है? कपिलेश्वर स्वामी मंदिर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह पूरा इलाका कुछ ही देर में पानी की लहरों में डूब गया। तिरुपति मंदिर की ओर जाने वाली घाट रोड पर कई लोग फंस गए। जैसे तैसे कई लोग अपनी जान बचा पाए। इस आफत के बीच लोग अपना जो भी सामान बचा सके वही बच पाया। सब किसी तरह एक दूसरे को बचाते, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें करते नजर आए। ऐसी ही सामूहिक कोशिशों से इस बस में बैठे बच्चों को बचाया जा सका जो पानी में फंस गई थी। देवी पद्मावती के मंदिर वाले तिरुचनूर का ये घर बाढ़ के पानी की ताकत को झेल नहीं पाया। इससे आसपास दहशत और बढ़ गई।
अधिकारियों का कहना है कि 12 से 14 सेंटीमीटर बारिश भी तिरुपति के लिए झेलना मुश्किल रहा, क्योंकि उससे पहले 10 दिन लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से स्वर्णमुखी नदी और सारे जलाशय भर गए थे और मिट्टी की नमी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी वजह से बाढ़ बहुत बड़ी हो गई।
अनंतपुर जिले में बाढ़ में फंसे एक जेसीबी पर चढ़े 10 लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ा। खास बात यह है कि अनंतपुर देश के सबसे सूखा प्रभावित जिलों में से एक है, लेकिन इस बार यहां आसमान बरसा तो भयानक बरसा। बारिश सामान्य से 179% ज्यादा हो गई। करीब के कडप्पा में भी 165% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ऊपर से अन्नामाया प्रोजेक्ट से अचानक छोड़े गए पानी में नेशनल हाईवे डूब गया। राज्य परिवहन की 3 बसों में बैठे कई लोग इस पानी में फंस गए। इन बसों में बैठे कम से कम 20 लोगों को बचाया ही नहीं जा सका। चंद्रगिरी से श्रीनिवास मंगापुरम जाने वाली कई सड़कें बाढ़ से कट गईं।
अधिकारियों का कहना है कि पिछले 140 बरस में पेन्नार नदी से नेल्लोर बराज में इतना सारा पानी कभी नहीं आया और इसी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 16 टूट गया कोवूरू के पास।
आंध्र प्रदेश में इस साल उत्तर पूर्वी मॉनसून ने कहर ढा दिया है। कुछ ही समय के अंदर सामान्य से 39% ज्यादा बारिश हुई है। मॉनसून की बारिश इतनी अप्रत्याशित और भयानक कैसे हो गई? दरअसल लोगों ने नदियों नालों पर निर्माण कर दिया है। पानी जाने के कुदरती रास्तों पर अतिक्रमण हो चुका है, लिहाजा आपदा आनी ही थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना है और बढ़ती आबादी की जरूरत के हिसाब से काफी छोटा। कुदरत के साथ खुलकर खिलवाड़ हुआ है और ऊपर से भ्रष्टाचार ने रही सही कसर पूरी कर दी। ये खतरा समझना है तो तिरुपति के करीब रायला चेरुवू पर नजर डालिए। यहाँ 500 साल पुराना और काफी बड़ा जलाशय है जो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इस बांध से इस बार पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से रविवार को निचले इलाके के 18 गांवों को खाली कराना पड़ा, क्योंकि बांध के टूटने की आशंका बढ़ गई थी।
हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इस जलाशय में पहले कभी इतना पानी नहीं आया। इसे इतने पानी के लिए नहीं बनाया गया था।
खतरा अभी टला नहीं है। करीब 30,000 लोग अब भी अपने घरों गांवों से दूर रह रहे हैं। इन हेलीकॉप्टरों से उन तक पानी और खाना पहुंचाया जा रहा है। तिरुपति शहर में जहां पानी अब उतर चुका है, वहां लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये बरसात उनका कितना कुछ अपने साथ ले गई। चिंता ये है कि नवंबर महीने के बाकी दिनों में अभी और बारिश का पूर्वानुमान है। उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।